पृष्ठ संख्या 238, अध्याय 25, महान तबला वादक कलाकार, व्यक्ति, वादन विशेषताएं। उस्ताद मुनीर खां, उस्ताद नथू खां, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन खां। तबला वादन के क्षेत्र में सब घराने के अत्यंत ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ वादकों ने अपनी निजी वैशिष्ट्यपूर्ण शैलियों से जीवन भर कला को प्रस्तुत किया। गत लगभग 250 वर्षों में इन कलाकारों ने अत्यंत कलात्मकता के साथ नावीन्यपूर्ण रूप में अपनी प्रतिभा एवं रियाज के बल पर अपनी कला को प्रभावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। फलतः पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज, शिष्य और श्रोता उनका गुणगान करते आए हैं। उनके वादन वैशिष्ट्यों, उनकी बुलंद महफिलों और उनके विषय में अन्य महान कलाकारों के द्वारा प्रकट किए गए प्रशंसोद्गारों के किस्सों, घटनाओं एवं आख्यायिकाओं को सुनते समय हमें आज भी आनंद प्राप्त होता है। हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी भावनाएं विलक्षण रूप में संवेदनशील बन जाती हैं और इन सब प्रक्रियाओं में कभी कभी हम सदगदित भी हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के संबंध में ये किस्से हम सुनते हैं वे आज जीवित नहीं है। उनमें से बहुतांश कलाकारों का वादन भी पहले कभी हमारा सुना हुआ नहीं होता, फिर भी उनके विषय में हम भावुक बनते हैं, उनके प्रति हमें अभिमान होता है, गर्व महसूस होने लगता है। उपर्युक्त अनुभव हमें संगीत में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है, चाहे वे व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज हों, राणा प्रताप हों, संत ज्ञानेश्वर महाराज हों, शेक्सपियर हों, सर जॉन ब्रैंडमन हों, मियां तानसेन हों, बैजू बावरा हो या वृंदावन मंदिर के भक्त गोविंद। इनमें से किसी को भी हमने देखा नहीं है, किंतु उनका नाम भी लिया जाए तो भी हमारे मन में चैतन्य पैदा होता है। तानसेन या बैजू के संगीत को प्रत्यक्षतः न सुनने पर भी हम उसे स्वर्गीय मानते हैं। 500 वर्ष पहले जो गायक अपने गायन से भारत भर को मोहित करता आया है वह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ होगा ही, अतः वह हमें अभिमानजनक एवं गर्व करने लायक प्रतीत होता है। इस प्रकार भावनाएं उत्तेजित होना स्वाभाविक एवं अनिवार्य हो तो भी मुझे यहाँ एक अंग्रेजी कहावत याद आती है, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, अर्थात सुनी हुई संगीत रचनाएं कर्ण मधुर हैं किंतु न सुनी हुई और भी मीठी और सुंदर प्रतीत होती हैं। किंतु मेरे वर्णन किए हुए कलाकारों के बारे में मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि भावुकता को टालकर वस्तुनिष्ठता के साथ उनका मूल्य मापन हो। पृष्ठ संख्या 239, महान तबला वादकों के जीवन, उनके वादन शैली, क्षमता और प्रभाव के विषय में लिखते समय मैंने कुछ चुने हुए कलाकारों का ही वर्णन करना तय किया है। उसके कारण इस प्रकार हैं। पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिन वादकों का वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ में मैं करने जा रहा हूँ उनके विषय में मुझे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई है और उनमें से बहुतांश तबला वादक कलाकारों का वादन मैंने स्वयं प्रत्यक्षतः सुना भी है। दूसरा, अ वर्ग में वर्णित वादकों के विषय में मैं केवल इसलिए नहीं लिख रहा कि वे सभी पुरानी पीढ़ी के तबला वादक हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी राह में इन कलाकारों ने तबला वादन कला को अपना निजी विशेष योगदान दिया है। अन्य वादकों की अपेक्षा एक अलग ही शैली उन्होंने निर्माण की है और उनके द्वारा विकसित शैलियाँ स्वतंत्र तबला वादन के प्रासाद में स्वतंत्र दालान के रूप में सम्मानित हुई हैं। तीसरा, मेरा वास्तव्य महाराष्ट्र में, विशेषतः मुंबई में ही हुआ, अतः बनारस घराने का तबला मुझे तुलनात्मकतः बहुत ही कम सुनने को मिला। केवल इसी कारण बनारस घराने के अ वर्ग में अंतर्भूत कलाकारों के विषय में मैं विस्तार पूर्वक नहीं लिख सका। यह वस्तुतः मेरी कमजोरी है। पंडित समता प्रसाद, पंडित अनोखेलाल और पंडित किशन महाराज तीनों कलाकार निस्संदेह अत्यंत श्रेष्ठ दर्जे के कलाकार होते हुए भी उपर्युक्त कारण से ही उनके बारे में मैं विस्तारशः नहीं लिख सका। चौथा, ब वर्ग के कलाकार युवा पीढ़ी के ज्येष्ठ वादक हैं तथा उनका वादन आज भी हमें सुनने को मिलता है। फलतः उनके चुने हुए वादन वैशिष्ट्यों का वर्णन मैंने यहाँ किया है। अवर्ग, उस्ताद मुनीर खां। उस्ताद मुनीर खां ने तबले की प्राथमिक शिक्षा अपने पिता उस्ताद काले खां से हासिल की। फिर उन्होंने उस्ताद हुसैन अली खां का गंडा बंधवाया। 15 साल तक उस्ताद हुसैन अली खां के पास तालीम लेने के बाद वे दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद बोली बख्श के भी शागिर्द बने। किसी भी घराने की रचना क्यों न हो, अगर वह अच्छी है तो उसे हासिल करना हमेशा उनका लक्ष्य रहा। उत्तमोत्तम तबले की रचनाएं प्राप्त करने के लिए वे सदैव उत्सुक रहते थे। उस्ताद नजर अली खां, ताज खां, नासर खां, पखावजी एवं अन्य इस प्रकार कुल मिलाकर 24 गुरुओं से उन्हें मानो तबले का एक खजाना ही मिल गया। सब घरानों का तबला उन्हें पसंद आता था। पृष्ठ संख्या 240। उनकी यह भी धारणा रही कि योग्य निकास और रियाज की मदद से कलाकार किसी भी घराने का तबला बजा सकता है। इस विचार को उन्होंने खुद के उदाहरण से साबित कर दिखाया। तबले के बहुत सारे घरानों की रचनाएं हासिल करने के कारण तबले के जगत में उन्हें कोठी वाले तबला वादक की उपाधि प्राप्त हो गई थी। जब एक व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की सुंदर रचनाएं जमा होती हैं तो तबले की दुनिया में उसे ऐसे व्यक्ति को गुलदस्ता के नाम से पुकारा जाता है। मुनीर खां वाकई गुलदस्ता वादक कलाकार थे। लगभग 24 गुरुओं से तबले की शिक्षा हासिल करने के बाद भी नई नई रचनाएं हासिल करने की उनकी तृष्णा बुझी नहीं, बल्कि महान गुरुओं के संस्कारों के कारण वे स्वयं भी नई नई खूबसूरत रचना बनाने लगे। अपने शिष्यों को आदर्श ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके और वे बड़े कलाकार बन सकें, इस दृष्टि से गुरु के पास जिन जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सब गुण उस्ताद मुनीर खां के पास विपुल मात्रा में विद्यमान थे। फलतः उस्ताद नजीर खां, उस्ताद थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन, उस्ताद शमसुद्दीन, उस्ताद हबीबुद्दीन, पंडित सुब्राय मामा जैसे चोटी के कलाकार उनके मार्गदर्शन एवं तालीम के जरिए निर्माण हो सके। उस्ताद नथु खां। उस्ताद नथु खां दिल्ली घराने के श्रेष्ठ तबला वादक उस्ताद बोली बख्श के सुपुत्र थे। सन 1930 के आसपास दो महान तबला वादक अपने अलग अलग वैशिष्ट्यों से तबला जगत को प्रभावित कर रहे थे। उनमें से एक हैं उस्ताद मुनीर खां, जिन्होंने विभिन्न घरानों के विविध बाजों की असंख्य रचनाएं 24 गुरुओं से प्राप्त करके उन्हें आत्मसात किया था और आदर्श गुरु की हैसियत से वे रचनाएं उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान की थी। उस जमाने के उस्तादी तबले के प्रभावी वादक हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां। ये तीनों कलाकार उस्ताद मुनीर खां के शिष्य थे, परंतु ये ही तीनों तबला वादक उस्ताद नथू खां साहब के भी वादन से यानि उनकी शैली एवं विचारों से पूर्णतया प्रभावित हो चुके थे। अजराणा घराने के महान तबला वादक उस्ताद हबीबुद्दीन खां ने तो नथू खां का गंडा भी बधवाया था। पूरब शैली के तैयार हाथ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले उस्ताद अमीर हुसैन ने नथू खां साहब का तबला सुनने पर दिल्ली वादन शैली को हस्तगत करने का निश्चय करके दो उंगलियों का प्रचंड रियाज किया था। उस्ताद अहमद जान थिरकवा भी उस्ताद नथू खां को गुरु स्थान में मानते थे, क्योंकि उस्ताद मुनीर खां के कथनानुसार उस्ताद नथू खां साहब ने थिरकवा खां साहब को मार्गदर्शन किया था। पृष्ठ संख्या 241। दिल्ली घराने का तबला पेशकार कायदा और रेले में खिल उठता है, ये रचना प्रकार विस्तारक्षम है। यह विस्तार कैसे किया जाए, इसका आदर्श उस्ताद नथू खां साहब थे। पेशकार कायदे की रचना विविध किंतु सीमित शब्दों से बंधी हुई होती है। ये रचनाएं विस्तारक्षम होने से नथू खां साहब की प्रतिभा को वही रचना रोज नए नए रूप में दिख पड़ती थी और उस नए रूप की रचना को वे उसी दिन प्रस्तुत करते थे। रंग बिरंगी कांचों के मर्यादित टुकड़े क्लाइडोस्कोप में डालने पर उसमें बिठाए गए शीशे के टुकड़े के कारण उस तंत्र में रखे हुए कांच के टुकड़ों की विविध आकारों की रचनाकृतियां तैयार होती हैं। उस यंत्र को घुमाने पर कांच के टुकड़े हिलते हैं और अलग अलग रचनाकृतियां तैयार होती हैं। जिस प्रकार मर्यादित संख्या के कांच के टुकड़ों की नई नई प्रतिमाएं तैयार होती हैं, उसी प्रकार एक ही रचना के नए स्वरूप उस्ताद नथू खां साहब के मन में स्फुरित होते थे और उन्हें वे समर्थता के साथ पेश करते थे। उनका अत्यंत प्रिय कायदा धातीट धातीट धाधातीट धाग तीना कीना, इस एक कायदे के अलग अलग नए रूप उन्हें प्रतिदिन दिख पड़ते थे। ऐसे प्रत्येक रूप को उस दिन वे धातीट के नए कायदे के रूप में प्रस्तुत किया करते थे और विद्वजन श्रोता भी उनके इस कायदे के नए रूप को एक नया कायदा मानकर स्वीकार कर लेते थे। इसका कारण यह है कि उक्त नई रचना का नयापन रसिक श्रोताओं को असली ही प्रतीत होता था। धातीट कायदे से उनके द्वारा निर्मित कायदे की एक नई प्रस्तुति इस प्रकार है। तीट धाग धीना धातीट धाधीना क्रधातीट धाग धीना धातीट धातीट धाग तीना केना। यह कायदा जटिल स्वरूप का है तथा वह 3-2-3 खंडों में रचा गया है। दो शुद्ध कायदों का जोड़ कायदा करने की पद्धति दिल्ली कायदे में प्रचलित है। ऐसा ही एक जोड़ कायदा उस्ताद नथू खां ने इस प्रकार रचा है। धान धातग धीन तीना ग धीट धगीन धाती धातिर किट धागे न धाती धागे तीन गिन। दिल्ली घराने का अनुशासन उनकी विचार परंपरा स्वयं की उनकी असामान्य निर्मिति क्षमता तथा सौंदर्य विषयक स्वतंत्र दृष्टिकोण के कारण उस्ताद नथू खां साहब जो रचनाएं करते थे वे दिल्ली की असली रचनाएं ही प्रतीत होती थीं। उनके द्वारा किया गया रचनाओं का विस्तार संपूर्ण रूप में घरानेदार और कलात्मक हुआ करता था। उनकी इस वादन शैली का प्रभाव संपूर्ण हिंदुस्तान पर न पड़े यह भला कैसे संभव था। उस्ताद नथू खां साहब की प्रतिभा युक्त विस्तार क्रिया के विषय में बोलते समय उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब अत्यंत नम्रतापूर्वक यह उद्गार प्रकट करते थे। पृष्ठ संख्या 242। हमारे उस्ताद नथू खां जब तबला बजाते थे तब वे सोने की स्याही से तबला लिखते थे। इस विधान का अर्थ यह है कि नथू खां साहब जो कुछ बजाते थे वह अन्य वादकों एवं विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय आचरण का पाठ ही बनता था। उस्ताद नथू खां अत्यंत तैयारी में तबला नहीं बजाते थे। उनका तबला बहुतांश में मध्य लय में बजता था, किंतु उनका वैशिष्ट था दाएं बाएं पर का उनका वजन, हाथ का निकास और विस्तार क्रिया का कल्पना विलास। उस्ताद नथू खां साहब के तबले का प्रभाव उस्ताद हबीबुद्दीन खां और उस्ताद इनाम अली के वादन पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ प्रतीत होता था। उस्ताद अहमद जान थिरकवा। उस्ताद अहमद जान थिरकवा 20वीं सदी के लोकप्रिय एवं अत्यंत प्रभावी तबला वादक हो गए। उस्ताद मुनीर खां उस्ताद थिरकवा के गुरु थे। उस्ताद थिरकवा के तबला वादन के कौशलों का अध्ययन करना हो तो पहले हमें महान तबला वादक मुनीर खां के व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। उस्ताद मुनीर खां के पास तबले की विविध शैलियों का एक बड़ा भंडार ही था और अपने सभी शिष्यों को उन्होंने सभी घरानों का तबला सिखाया। उस्ताद मुनीर खां के पास अनेक कलाकार तबला सीखते थे जो आगे चलकर पर्याप्त मशहूर हो गए, किंतु मुख्यतः उनका तबला सीखकर बहुत बड़ा यश प्राप्त करने वाले तबला वादक हैं उस्ताद थिरकवा और उस्ताद अमीर हुसैन खां। तबला वादन के प्रस्तुतिकरण के आकृति, गढ़न, शब्द संपत्ति और निकास, इन तीन अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण निकास अंग के उस्ताद थिरकवा सर्वश्रेष्ठ तबला वादक हो गए। अर्थात निकास के साथ ही समृद्ध भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उस्ताद थिरकवा खां तबला साहित्य भाषा से भी उतना ही समृद्ध था। तबला वादन सुनते समय हमें प्रतीत होता है कि केवल साहित्य उत्कृष्ट परिणाम साध नहीं सकता, किंतु निकृष्ट साहित्य युक्त तबला वादक भी कौशलपूर्ण वजनदार हाथ से और नजाकत के साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह बहुतांश में परिणाम कारक हुआ करता है। उस्ताद थिरकवा खां में स्तरीय साहित्य एवं अत्युत्तम तथा प्रभावी निकास दोनों गुण एक साथ होने से उनका वादन हमेशा परिणाम कारक एवं उच्च स्तरीय हुआ करता था। उनका छोटे आकार का मोहरा भी श्रोताओं से दाद पाया करता था। घरानेदार पद्धति से अनुशासनबद्ध रूप में बजाया जाने वाला पेशकार दिल्ली घराने का खास वैशिष्ट्य माना जाता है, किंतु उस पेशकार को उस्ताद थिरकवा ने कभी नहीं बजाया। केवल ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल प्रोग्राम में तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में उन्होंने दिल्ली का पेशकार बजाया था, बल्कि उन्होंने एक अलग ही पेशकार प्रस्तुत किया। पृष्ठ संख्या 243। पेशकार के प्रस्तुतिकरण में चार बातें मुख्य होती हैं। पहला, वह धीमी लय में हो। दूसरा, उसका प्रस्तुतिकरण गायन की आलापी के अनुरूप उपज अंग से काव्यमय भाषा में हो। तीसरा, उक्त प्रस्तुतिकरण कायदे के कड़े बंधन से मुक्त हो। और चौथा, विविध अक्षरों के प्रस्तुतिकरण में खाली भरी के तत्व का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग किया गया हो। उस्ताद थिरकवा के पेशकार वादन में इन चार बातों का मुक्त एवं कलात्मकता के साथ प्रयोग किया गया पाया जाता है। उनके जो खास वैशिष्ट्य उनके पेशकार में हम सुनते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, इस रचना का धीमी लय में प्रस्तुतिकरण। दूसरा, बाएं के कलात्मक निकासों के जरिए निर्माण होने वाले ह्रस्व दीर्घ घुमारे। तीसरा, चुनी हुई विविध मात्राओं पर बिना अक्षर बजाए किए गए अनाघात। चौथा, तीट या धीर धीर को छोड़कर बहुतांश सभी अक्षरों का धीमी लय में कलात्मक उपयोग। धीरान जैसे गद्यमय अक्षर भी उन्होंने पेशकार में बजाए हैं। पांचवा, चतरस्र जाति के पेशकार में से कुछ तिस्र जाति के शब्दों का प्रयोग करते हुए फिर मूल चतरस्र जाति में आगमन लय बदलने की इन क्रियाओं से श्रोताओं को नवीनता एवं अपेक्षा पूर्ति का आनंद प्राप्त होता है। छठवां, सम के पूर्व की चार मात्राओं में एक चतुर्थांश मात्रा का विराम देकर घिड़ान धा तुन्ना की सवा मात्रा की तिहाई धीमी लय में लेकर सम पर आना। सातवां, कई बार ड्योढ़ी तीसर जाति में कुछ शब्द प्रयोग के दौरान उसी में से ड्योढ़ी के कायदे का आरंभ। आठवां, पेशकार वादन की उपरांत कभी कभी पेशकार रंग नाम से प्रचलित नाजुक रचना से वादन में रंग भरना। पेशकार वादन के उपरांत उस्ताद थिरकवा कुछ दिल्ली के, कुछ अजराणे के तो कुछ फरुखाबाद के कायदे प्रस्तुत किया करते थे। दिल्ली के कायदे प्रस्तुत करते समय दिल्ली घराने की अपेक्षित लय का ही इस्तेमाल वे किया करते थे। कायदे का विस्तार वे मर्यादित बोलों से किया करते थे। उनके हाथ का वजन अप्रतिम होने से उनके वादन से श्रोताओं को श्रेष्ठ स्तर का आनंद प्राप्त होता था। अजराणे के कायदे भी वे समर्थता के साथ बजाया करते थे, किंतु थिरकवा खां साहब की खासियत थी फरुखाबाद घराने के कायदों का प्रस्तुतिकरण। पृष्ठ संख्या 244। कायदे के पश्चात रेले शुरू हुआ करते थे। रेलों को वे दिल्ली एवं फरुखाबाद घरानों के अंग से अति उत्तम रीति से बजाया करते थे। रेले में अक्षरों के गूंज युक्ति की निरंतरता की जरूरत होती है। चाट और बाएं की गूंज से एक स्वरमय प्रवाही गुंजन उनके रेला वादन में सुनने को मिलता था। उनके वादन में स्वरमयता का भी उच्च कोटि का आनंद प्राप्त होता था। भिन्न भिन्न शब्दाक्षरों के अनेक रेले वे बजाया करते थे। उनके प्रत्येक रेले में उनकी कुछ निजी खास निकास शैलियों की वजह से उसमें अटूट मिठास प्रतीत होती थी। तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक विस्तारक्षम स्वर को आरंभ करने से पहले या बाद में उस्ताद थिरकवा छोटे छोटे मुखड़े मोहरे एवं टुकड़े अत्यंत नजाकत के साथ डौलदार रूप में बजाकर श्रोताओं से आश्चर्य मिश्रित दाद प्राप्त करते थे। टुकड़ों का तबला उस्ताद थिरकवा के सौंदर्यपूर्ण वादन की चरम सीमा थी। समर्थ भाषा की सहायता से विविध लयों में बांधी हुई स्तरीय रचनाओं का उनका प्रस्तुतिकरण सुनने को मिलना सचमुच भाग्य की बात होती थी। गत टुकड़ों का उनका यह वादन लखनऊ एवं फरुखाबाद दोनों शैलियों से अलंकृत हुआ करता था। स्वर्गीय बाल गंधर्व कंपनी में लगभग एक तप तक साथ संगत करने के कारण और उनके निजी रसिक व्यक्तित्व के फलस्वरूप उनकी साथ संगत स्वरमय एवं रंगतदार होती थी, किंतु यह स्वरमयता एवं रंगत मात्र साथ संगत तक ही मर्यादित नहीं रही, बल्कि उनका स्वतंत्र तबला वादन भी उतना ही रंगतदार एवं प्रभावपूर्ण होता था।